एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने समाज को देखने का हमारा नजरिया काफी हद तक बदल दिया। एमिल दुर्खीम।
नमस्कार।
हाँ बिल्कुल, समाज शास्त्र की दुनिया में तो उनका नाम मतलब बहुत बड़ा है। अक्सर उन्हें आधुनिक समाज शास्त्र के संस्थापकों में गिना जाता है।
सही, और उनकी खास बात यह है कि उनका काम सिर्फ अकादमिक दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उनका काम ये समझने में मदद करता है कि ये जो समाज है, ये एक साथ कैसे टिका रहता है, क्यों बदलता है, और शायद सबसे जरूरी, एक व्यक्ति और पूरे समूह के बीच का रिश्ता क्या है। उनका एक बड़ा लक्ष्य था समाज शास्त्र को दर्शन शास्त्र की छाया से निकालकर उसे एक ठोस वैज्ञानिक अनुशासन बनाना। तो ये जानना दिलचस्प होगा कि वो किस दौर में, किस माहौल में ये सब सोच रहे थे। दुर्खैम, मतलब 1858 से 1917 तक, ये फ्रांस के तीसरे गणराज्य का समय था।
हाँ, और वो दौर फ्रांस के लिए बड़ी उथल पुथल का था। तेजी से बदलाव आ रहे थे,
जैसे
जैसे औद्योगिकीकरण हो रहा था, कारखाने लग रहे थे, लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे थे, मतलब शहरीकरण, और साथ ही धर्म का प्रभाव समाज पर कम हो रहा था, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं।
तो पुरानी सामाजिक संरचनाएं जो सदियों से थीं, वो एक तरह से टूट रही थीं।
बिल्कुल, वो ताना बाना उधड़ रहा था। लोगों के आपसी रिश्ते, उनकी परंपराएं, सब पर सवाल उठ रहे थे। माहौल थोड़ा अनिश्चितता का था।
और विचारों की दुनिया में क्या चल रहा था?
उस वक्त ऑगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म का विचार हवा में था।
अच्छा, ये कि समाज का भी वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है।
हाँ बिल्कुल, यही कि जैसे हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, वैसे ही समाज का भी कर सकते हैं, तथ्यों के आधार पर।
दुर्खैम ने इसी विचार को आगे बढ़ाया, और उस दौर की कुछ बड़ी घटनाओं ने भी उन पे असर डाला होगा।
बहुत गहरा असर डाला, जैसे 1870-71 का फ्रेंको प्रशिया युद्ध, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी, और फिर वो ड्रेफस अफेयर, एक यहूदी सैनिक पर जासूसी का झूठा आरोप।
हाँ, उसने तो पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया था।
बिल्कुल, इन सब घटनाओं ने दुर्खीम को राष्ट्रीय एकता और समाज में नैतिकता की जरूरत पर सोचने को मजबूर किया। उन्हें लगा कि समाज को जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए।
और उनके समकालीन विचारक कौन थे? क्या वो अकेले ही इस तरह सोच रहे थे?
नहीं, अकेले तो नहीं थे, जैसे जर्मनी में मैक्स वेबर थे, लेकिन वेबर का जोर थोड़ा अलग था। वो व्यक्ति के नजरिए उसके दिए मतलब को समझने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे।
जबकि दुर्खीम सामाजिक संरचनाओं पर फोकस कर रहे थे।
दुर्खीम समाज के बाहरी ढांचे जो व्यक्ति पर असर डालते हैं, उन पर ज्यादा केंद्रित थे। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स के विचार भी फैल रहे थे, बिल्कुल वर्ग संघर्ष, जबकि दुर्खीम समाज में एकता, जुड़ाव कैसे बने, इस पर जोर दे रहे थे। तो आप देख सकती हैं कि अलग अलग नजरिए थे उस वक्त।
चलिए थोड़ा उनके शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई पर बात करते हैं। उनका जन्म फ्रांस के एपिनाल शहर में हुआ था, एक यहूदी परिवार में।
हाँ, और उनके परिवार की पृष्ठभूमि धार्मिक थी। पिता, दादा, परदादा सब रब्बी थे, यानी यहूदी धर्मगुरु।
लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना।
नहीं, उन्होंने खुद एक धर्मनिरपेक्ष रास्ता चुना। वो अज्ञेयवादी बन गए थे, मतलब ईश्वर के होने ना होने पर कोई पक्की राय नहीं, लेकिन
लेकिन
समाज में धर्म का क्या रोल है, उसकी क्या अहमियत है, इसमें उनकी दिलचस्पी हमेशा बनी रही। ये उनके काम में दिखता भी है।
और पढ़ाई में कैसे थे वो?
बहुत मेधावी छात्र थे। पेरिस के बहुत प्रतिष्ठित संस्थान एकॉल नॉर्मले सुपेरियर से पढ़े। वहां उस जमाने के कई बड़े विचारक और नेता उनके साथ थे। शुरुआत में फलसफा पढ़ा, पर मन समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की तरफ खींचता गया।
आपने जर्मनी जाने का जिक्र किया था।
हाँ, उनकी जर्मनी की अकादमिक यात्रा बहुत अहम थी। वहीं उन्होंने सीखा कि सामाजिक विज्ञान में भी तथ्यों और आंकड़ों का इस्तेमाल करके, मतलब अनुभवजन्य तरीकों से, रिसर्च कैसे की जा सकती है। ये उनके लिए एक तरह का टर्निंग पॉइंट था।
और ड्रेफस अफेयर का उन पर निजी असर भी पड़ा।
हाँ, उसने उन्हें झकझोर दिया था, एक यहूदी होने के नाते भी और एक फ्रांसीसी नागरिक के तौर पर भी। उन्हें लगा कि ये जो नफरत और बंटवारा है समाज में, इसका इलाज जरूरी है, और उन्हें यकीन हो गया कि आधुनिक समाज को एक मजबूत, धर्मनिरपेक्ष, नैतिक आधार चाहिए।
और यही नैतिक आधार, यही एकजुटता उनके विचारों का केंद्र बन गई।
बिल्कुल, यहीं से उनके वो बड़े आइडियाज निकलते हैं जिन पर हम अब बात कर सकते हैं।
तो उनका सबसे बुनियादी सवाल था, समाज को क्या चीज एक साथ बांधे रखती है?
हाँ, यही उनका केंद्रीय प्रश्न था, और इसी का जवाब ढूंढते हुए उनका सबसे महत्वपूर्ण विचार सामने आया, सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट्स।
सामाजिक तथ्य, ये थोड़ा समझाएंगे?
जरूर। देखें, ये समाज के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के वो तरीके हैं जो व्यक्ति से बाहर मौजूद होते हैं। मतलब ये हमारी व्यक्तिगत सोच या मर्जी से नहीं चलते।
अच्छा।
जैसे जैसे कानून हैं, नैतिकता के नियम हैं, समाज के रीति रिवाज हैं, भाषा है, यहाँ तक कि पैसा, ये सब सामाजिक तथ्य हैं। ये हमारे पैदा होने से पहले भी थे, हमारे बाद भी रहेंगे।
और ये हम पर दबाव डालते हैं।
हाँ, एक तरह का सामाजिक दबाव। हम इन्हें समाज में आकर सीखते हैं, अपनाते हैं। हम चाहें या ना चाहें, हमें इनके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे ट्रैफिक नियम है ना, आप अपनी मर्जी से सड़क के किसी भी तरफ गाड़ी नहीं चला सकते।
समझ रही हूँ, ये व्यक्तिगत चीज नहीं, सामूहिक चीज है।
बिल्कुल। और इन्हीं सामाजिक तथ्यों के आधार पर समाज में एकजुटता बनती है। यही वो सामाजिक एकजुटता यानी सोशल सॉलिडेरिटी की बात करते हैं।
उन्होंने दो तरह की एकजुटता बताई थी, है ना?
हाँ, पारंपरिक सरल समाजों में होती है यांत्रिक एकजुटता। यहाँ लोग इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। सबके विश्वास एक जैसे, काम एक जैसा, जीवन शैली एक जैसी, सब एक मशीन के पुर्जों की तरह।
और आधुनिक समाजों में जहाँ बहुत ज्यादा विविधता है,
आधुनिक जटिल समाजों में जहाँ हर कोई अलग अलग काम में स्पेशलाइज्ड है, वहाँ होती है सावयवी एकजुटता।
सावयवी मतलब ऑर्गेनिक।
हाँ, जैसे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, हाथ, पैर, दिल, दिमाग, सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और मिलकर पूरे शरीर को चलाते हैं।
अच्छा।
वैसे ही आधुनिक समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, टीचर, सब अपनी अपनी विशेषज्ञता से एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं और यही निर्भरता हमें जोड़ती है।
ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है, लेकिन तब क्या होता है जब समाज के ये नियम या ये जुड़ाव कमजोर पड़ जाते हैं?
हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जिसे दुर्खीम ने एनोमी कहा। ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है नियमहीनता या दिशाहीनता।
एनोमी,
ये तब होता है जब समाज में नैतिक मार्गदर्शन या नियम टूट जाते हैं। पुराने नियम काम नहीं करते, नए अभी बने नहीं हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब समाज बहुत तेजी से बदलता है, जैसे अचानक कोई आर्थिक संकट आ जाए या बहुत तेजी से समृद्धि आ जाए।
तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
हाँ, लोग भटक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, उनसे क्या उम्मीद की जाती है। अकेलापन महसूस करते हैं। दुर्खीम मानते थे कि ये स्थिति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है।
और एक और कॉन्सेप्ट था उनका, सामूहिक चेतना।
हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियस। ये किसी समाज के साझा विश्वास, नैतिक विचार और भावनाएं हैं जो उस समाज के ज्यादातर सदस्यों में होती हैं और उन्हें एक साथ लाती हैं। ये एक तरह से समाज की सामूहिक आत्मा है।
तो दुर्खीम के लिए समाज सिर्फ व्यक्तियों का जोड़ नहीं था।
बिल्कुल नहीं। वो कहते थे कि समाज व्यक्तियों के जुड़ने से बनी एक अलग ही हकीकत है, एक विशिष्ट वास्तविकता, सुई जेनेरस रियलिटी। उसकी अपनी पहचान है, अपनी चेतना है जो व्यक्तियों से ऊपर है।
इसी सोच ने समाजशास्त्र को एक अलग पहचान दी।
हाँ, उन्होंने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और दर्शन से अलग एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। और उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद स्कूल की नींव रखी।
ये क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म?
ये नजरिया समाज को एक जटिल सिस्टम की तरह देखता है, जैसे एक शरीर या मशीन। इस सिस्टम के अलग अलग हिस्से होते हैं, परिवार, शिक्षा व्यवस्था, सरकार, धर्म, अर्थव्यवस्था वगैरह, और हर हिस्से का अपना एक खास काम या प्रकार्य होता है जो पूरे सिस्टम को स्थिर और एकजुट बनाए रखने में मदद करता है।
अच्छा, तो हर चीज का समाज में कोई ना कोई रोल है, कोई फंक्शन है।
हाँ, दुर्खीम के नजरिए से भले ही वो चीज हमें नकारात्मक लगे, जैसे अपराध, उसका भी कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे नैतिक सीमाओं को स्पष्ट करना।
ये सारे विचार उनकी किताबों में और विस्तार से मिलते हैं। उनकी पहली बड़ी कृति थी समाज में श्रम विभाजन, द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893 में।
हाँ, वो उनकी डॉक्टरेट थीसिस थी। उसमें उन्होंने ये यांत्रिक और सावयवी एकजुटता का पूरा विश्लेषण किया कि कैसे जैसे जैसे समाज में काम का बंटवारा बढ़ता है, एकजुटता का आधार बदल जाता है समानता से निर्भरता की ओर।
फिर 2 साल बाद आई समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, 1895 में। ये तो बहुत प्रभावशाली किताब मानी जाती है।
बिल्कुल, ये एक तरह से समाजशास्त्र का घोषणा पत्र था। इसमें इन्होंने कहा कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह अध्ययन करना चाहिए।
और वस्तुओं की तरह मतलब?
मतलब पूरी निष्पक्षता से, वैज्ञानिक तरीके से। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी भौतिक वस्तु का अध्ययन करता है, अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों को अलग रखकर, सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देना, आंकड़ों पर ध्यान देना। और यही उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर हैं और उस पर दबाव डालते हैं।
और फिर उनकी शायद सबसे प्रसिद्ध किताब आत्महत्या सुइसाइड 1897 में, ये तो वाकई एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम था।
हाँ, क्योंकि आत्महत्या को उस समय तक एक बहुत ही व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक कार्य माना जाता था। दुर्खीम ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय आंकड़ों का इस्तेमाल करके दिखाया कि आत्महत्या की दरें व्यक्तिगत कारणों से ज्यादा सामाजिक कारकों से जुड़ी हैं।
सामाजिक कारक जैसे?
जैसे समाज का व्यक्ति पर कितना नियंत्रण है, जिसे वो नियमन या रेगुलेशन कहते हैं, और व्यक्ति समाज से कितना जुड़ावा महसूस करता है, जिसे वो एकीकरण या इंटीग्रेशन कहते हैं।
अच्छा,
उन्होंने दिखाया कि जहां एकीकरण और नियमन बहुत कमजोर होते हैं या फिर बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, वहां आत्महत्या की दरें बढ़ जाती हैं।
इसी आधार पर उन्होंने वो चार तरह की आत्महत्या बताई थी।
हाँ, अहमवादी आत्महत्या, जब व्यक्ति समाज से बहुत कटा हुआ अकेला महसूस करे। परहितवादी, जब व्यक्ति समाज के लिए खुद को इतना समर्पित कर दे कि अपनी जान दे दे, जैसे सैनिक या सती प्रथा। एनोमिक, जब समाज में नियम टूट जाएं, दिशाहीनता हो, जैसा हमने एनोमी में डिस्कस किया। और भाग्यवादी, जब समाज का नियंत्रण बहुत ही ज्यादा हो, व्यक्ति का दम घुटने लगे, जैसे गुलामी में।
तो मूल बात ये थी कि ये सिर्फ मन का मामला नहीं, समाज का भी मामला है।
बिल्कुल, ये साबित करना कि एक निहायत व्यक्तिगत लगने वाला कृत्य भी सामाजिक शक्तियों से प्रभावित होता है, ये समाजशास्त्र के लिए बहुत बड़ी बात थी।
और उनकी आखिरी महान कृति धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912 में आई।
हाँ, इसमें उन्होंने धर्म की जड़ों को खंगाला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के टोटमवाद का अध्ययन किया।
टोटमवाद
मतलब वो जो किसी जानवर या पौधे को पवित्र मानते हैं।
हाँ,
और उनका तर्क था कि जब लोग इन पवित्र चीजों, टोटम या ईश्वर की पूजा करते हैं, तो असल में वो अनजाने में समाज की ही शक्ति की पूजा कर रहे होते हैं। धर्म, उनके अनुसार, समाज को एकजुट करने और उसकी नैतिक शक्ति को दर्शाने का एक तरीका है। समाज खुद ही खुद को पूजता है धर्म के जरिए।
वाह, ये तो बहुत ही रेडिकल आइडिया है।
बिल्कुल, और इसी किताब में उन्होंने सामूहिक उत्साह, कलेक्टिव एफर्वेसेंस की बात की।
हाँ, ये क्या है?
वो तीव्र ऊर्जा, वो जोश, वो बिजली जैसी तरंग जो लोगों को बड़े धार्मिक या सामाजिक आयोजनों, अनुष्ठानों में एक साथ महसूस होती है। सोचिए किसी बड़े त्योहार का माहौल, या कोई राष्ट्रीय उत्सव, या कोई बड़ा कॉन्सर्ट।
हाँ हाँ, वो जो एक कलेक्टिव एनर्जी महसूस होती है।
बिल्कुल, दुर्खीम कहते हैं कि यही अनुभव समाज के नैतिक बंधनों को ताज़ा करता है, उन्हें मजबूत करता है, लोगों को अपने समूह का हिस्सा होने का गहरा एहसास कराता है।
अगर हम दुर्खीम की तुलना उनके समकालीन बड़े विचारकों जैसे मार्क्स और वेबर से करें, तो मुख्य अंतर क्या नज़र आते हैं?
देखिए, जहाँ तक मार्क्स का सवाल है, उनका पूरा ध्यान आर्थिक संरचनाओं और वर्ग संघर्ष पर था। वो मानते थे कि समाज का इंजन संघर्ष है।
और दुर्खीम?
दुर्खीम का जोर सामाजिक व्यवस्था, नैतिक एकता और साझा मूल्यों पर था। वो संघर्ष से ज्यादा ये देख रहे थे कि समाज जुड़ता कैसे है, बिखरने से बचता कैसे है।
और वेबर के साथ तुलना करें तो?
वेबर व्यक्ति के सब्जेक्टिव अनुभव, उसके इरादों, उसके दिए अर्थों को समझने पर जोर देते थे। वो वर्स्टेन यानी सहानुभूतिपूर्ण समझ की बात करते थे।
अच्छा,
जबकि दुर्खीम का फोकस बाहरी, वस्तुनिष्ठ सामाजिक संरचनाओं और पैटर्न्स पर था, जिन्हें मापा जा सके, जिनका आंकड़ों से अध्ययन किया जा सके। कह सकते हैं कि दुर्खीम का अप्रोच ज्यादा मैक्रो यानी बड़े पैमाने का था, जबकि वेबर माइक्रो यानी व्यक्तिगत स्तर पर भी ज्यादा ध्यान देते थे।
तो दुर्खीम की विरासत क्या रही? उनका असर कितना गहरा और दूर तक गया?
बहुत गहरा। उन्होंने सचमुच 20वीं सदी के समाजशास्त्र की नींव रखी। खासकर अमेरिका में टेलकॉट पार्सन्स जैसे समाजशास्त्रियों ने उनके संरचनात्मक प्रकार्यवाद को आगे बढ़ाया।
और समाजशास्त्र के अलावा भी?
हाँ, मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी पर भी उनका बहुत असर पड़ा, खासकर उनके भतीजे और शिष्य मार्सेल माउस के जरिए। इतिहास, अपराध विज्ञान, शिक्षा, कई क्षेत्रों में उनके विचारों की गूंज सुनाई देती है।
और आज के जमाने में क्या दुर्खीम आज भी प्रासंगिक है?
मेरे ख्याल से तो शायद पहले से भी ज्यादा।
कैसे?
उनकी एनोमी की अवधारणा को ही लीजिए। आज के दौर में हम अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य संकट, सामाजिक बिखराव की बातें सुनते हैं।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं।
तो क्या ये एक तरह की एनोमी नहीं है? जब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सोशल मीडिया का प्रभाव है, तो क्या पुराने नैतिक नियम, पुराने जुड़ाव के तरीके कमजोर पड़ रहे हैं? क्या लोग दिशाहीन महसूस कर रहे हैं? दुर्खीम का फ्रेमवर्क इसे समझने में मदद करता है।
ये बात तो सोचने वाली है, क्या ये नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन एनोमी के नए रूप पैदा कर रहे हैं?
ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज समाजशास्त्री काम कर रहे हैं। इसी तरह उनकी सामाजिक एकजुटता की बात, आज की बटी हुई दुनिया में ध्रुवीकरण के माहौल में ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि समाज को क्या चीज जोड़ सकती है। राष्ट्रीय पहचान कैसे बनती है, राजनीतिक आंदोलन कैसे काम करते हैं, यहां तक कि ऑनलाइन कम्युनिटीज कैसे बनती हैं, इन सबको समझने में भी दुर्खीम के विचार मददगार हो सकते हैं।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो उनके विचारों को सक्सिंक्ट तरीके से बताते हैं, जैसे सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझें।
हाँ, ये तो उनका मूल मंत्र था। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना है तो ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, निष्पक्षता चाहिए।
और एक ये भी है, जब लोकाचार पर्याप्त होते हैं तो कानूनों की आवश्यकता नहीं होती, जब लोकाचार अपर्याप्त होते हैं तो कानून लागू नहीं किए जा सकते।
क्या बात है, मतलब असली सामाजिक व्यवस्था अंदर से आती है, साझा नैतिकता से। अगर लोगों में सही गलत की समझ ही नहीं होगी तो सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, वो लागू ही नहीं हो पाएंगे।
ये बहुत गहरी बात है। और एक और, समाज केवल व्यक्तियों का योग नहीं है, उनके जुड़ाव से बनी व्यवस्था एक विशिष्ट वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है।
हाँ, ये उनके समाज के नजरिए का सार है। सोसाइटी इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। समाज अपने आप में एक इकाई है, सिर्फ व्यक्तियों का झुंड नहीं।
उनके जीवन से जुड़े भी कुछ रोचक पहलू हैं। आपने ड्रेफिस अफेयर का जिक्र किया था, वो उसमें ड्रेफिस के बड़े समर्थक थे।
हाँ, वो खुलकर सामने आए थे। वो मानते थे कि ये जो यहूदी विरोध है, ये फ्रांस की नैतिक बीमारी का लक्षण है और इसका इलाज शिक्षा है। स्कूलों में एक नई धर्मनिरपेक्ष नैतिकता सिखाई जानी चाहिए।
वो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे,
बहुत ज्यादा। वो खुद एक गंभीर किस्म के बुद्धिजीवी थे, लेकिन कहा जाता है कि क्लास में उनके लेक्चर बहुत जबरदस्त होते थे। वो प्रोफेसर की भूमिका को लगभग एक पुरोहित जैसा मानते थे कि उनका काम है अगली पीढ़ी को आधुनिक समाज के नैतिक सिद्धांत देना।
उनके निजी जीवन में एक बड़ी ट्रेजेडी भी हुई थी।
हाँ, पहले विश्व युद्ध में उनके बेटे आंद्रे की मौत हो गई। आंद्रे खुद भी एक उभरता हुआ विद्वान था। इस सदमे ने दुर्खीम को बुरी तरह तोड़ दिया।
हाँ, कहा जाता है कि वो इस गम से कभी उभर नहीं पाए।
और 1917 में स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो गई। कई लोग मानते हैं कि उनके बेटे की मौत का सदमा इसकी एक बड़ी वजह थी। उन्होंने अपनी आखिरी ऊर्जा देशभक्ति से जुड़े पर्चे लिखने में लगाई।
उनका घर भी उस जमाने में बुद्धिजीवियों का एक केंद्र बन गया था।
हाँ, पेरिस में उनका घर एक तरह का सैलून था, जहां भविष्य के कई समाजशास्त्री और विचारक इकट्ठा होते थे। वो अकादमिक काम को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं मानते थे।
तो कुल मिलाकर एमिल दुर्खीम हमें क्या याद दिलाते हैं?
वो हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान बुनियादी तौर पर सामाजिक प्राणी हैं। हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी आज़ादी, हमारी खुशहाली, सब कुछ एक नैतिक समुदाय के साथ हमारे जुड़ाव पर निर्भर करता है। हम अकेले टापू नहीं हैं।
और आज के संदर्भ में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
बिल्कुल, आज जब हम डिजिटल युग में नए तरह के अकेलेपन और सामाजिक बिखराव का सामना कर रहे हैं, तो दुर्खीम का वो सवाल कि व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामूहिक एकजुटता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये और भी प्रासंगिक हो गया है।
क्या आज की तेज रफ्तार जिंदगी, ये टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरे से और समाज से काट रही है? क्या ये एक नई तरह की अनोमी पैदा कर रही है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, श्रोताओं को भी सोचने की जरूरत है। दुर्खीम का काम हमें इन सवालों से जूझने के लिए जरूरी वैचारिक साधन देता है।
बिल्कुल, एक गहरा विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।